हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। पति हो नहीं थे, तलाक हो चुका है हमारा सालों पहले। अब तुम्हारा मुझ पर या मेरे बेटे पर कोई अधिकार नहीं, कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा मुझसे, इसलिए मुझसे ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी मत करना। और अभी तो छू लिया, पर दोबारा अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो अभी तो बस धक्का ही दिया है, अगली बार सीधा हवालात पहुँचा दूंगी। और कसम से इस बार किसी पर भी तरस खाकर तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। इसलिए अगर अपनी भलाई चाहते हो तो मुझसे, मेरे परिवार और मेरे बेटे से दूर रहना। प्रीति की धमकी का प्रेम पर रत्ती भर असर नहीं पड़ा। वो प्रीति के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए डिठाई से बोला, नहीं रहूंगा दूर, क्या कर लोगे तुम? पुलिस की धमकी देकर डरा रही हो मुझे, पर मैं नहीं डरता किसी से। इसके बाद उसने अर्श की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारा भले डिवोर्स हुआ हो और अब तुम मेरे ही भाई से शादी करके उसके साथ रह रही हो, पर इससे ये सच नहीं बदल जाता कि तुम्हारी पहली शादी मुझसे हुई थी। भले हम साथ नहीं, पर आज भी इसका बाप मैं ही हूँ। मेरा खून दौड़ता है इसकी रगों में, मेरा बेटा है ये, और कोई मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकता। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, जिसके साथ चाहे रहो, पर मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। कैसा बेटा और किसका बेटा? आज मुझे बेशर्मो जैसे ये बता रहे हो कि इसके अंदर तुम्हारा खून है, तो ये बात तुम्हें तब याद क्यों नहीं आई जब शादी की अगली रात मुझे छोड़कर भाग गए थे तुम, और जब मेरी प्रेगनेंसी का पता चला था तो साफ मुकर गए थे? तब तुम्हें याद नहीं आया था कि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी मैं? तब तो तुमने मेरे और मेरे बच्चे के प्रति अपने फर्ज से सीधे से मुंह मोड़ लिया था और दुनिया के ताने सुनने के लिए अकेला छोड़ दिया था मुझे। आज बहुत प्यार जाग रहा है तुम्हारे मन में मेरे बेटे के लिए। आज याद आ रहा है तुम्हें कि तुम बाप हो इसके। उस दिन कहाँ था तुम्हारे अंदर का ये बाप जब उस नवजात बच्चे को खून की ज़रूरत थी और आयुष्मान जी तुम्हारे सामने अपने बेटे की जान की भीख मांगने आए थे? तब तो तुम्हारा न मुझसे कोई रिश्ता था और ना ही वो बच्चा तुम्हारा कुछ लगता था। तुमने तो मेरे बेटे को खून देने से इनकार कर दिया था ना, मेरे पति को जलील करके खाली हाथ वापस भेज दिया था, छोड़ दिया था मेरे बेटे को मरने के लिए, और आज यहाँ चले आए मेरे बेटे पर अपना हक जताने? शर्म नहीं आई तुम्हें यहाँ आते हुए? धिक्कार नहीं तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें? खैर, तुमसे इसकी उम्मीद रखना ही बेकार है। जो आदमी अपनी हवस मिटाने के लिए शादीशुदा होते हुए दूसरी लड़की से शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, काम निकलते ही उस लड़की को अकेला छोड़कर भाग जाए, बिना किसी गुनाह के उसे दुनिया के सामने गुनाहगार साबित कर दे, अपनी गलती पर उसे दुनिया के ताने सुनने पर जलील होने पर मजबूर कर दे, अपने ही बच्चे की जिम्मेदारी लेने और अपनी गलती मानने से इनकार कर दे, एक नवजात बच्चे को मौत के मुँह में धकेल दे, उससे इंसानियत की उम्मीद तक रखना गुनाह है। और आज यहाँ आकर तुमने ये सब कहकर साबित कर दिया कि तुम इंसान नहीं, एक जानवर हो जिसको सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। खैर, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना था। अच्छा हुआ जो तुमने मेरे बेटे को खून नहीं दिया। अगर मेरे बेटे की जान तुम्हारे दिए खून से बचती तो मैं अपने ही हाथों अपने बच्चे का गला घूंटकर उसे मार देती। पर उसे खून तुमने नहीं दिया, उसकी जानों से इंसान ने बचाई जो उसके पापा हैं। मुझ पर और अर्श पर सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान जी का अधिकार है, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। तुमसे जुड़ा सभी रिश्ता मैं उसी दिन तोड़ चुकी हूँ जब मुझे तुम्हारी पहली पत्नी और बच्चे का पता चला था। मेरे बेटे के बाप तुम नहीं, उसके पिता आयुष्मान जी हैं, जिन्होंने ना सिर्फ उसे अपना नाम दिया बल्कि उसकी माँ और उसे दिल से अपनाकर दुनिया के सामने इज्जत से सर उठाकर चलने का अधिकार दिया। तुम्हारे तरह हमें दुनिया की भीड़ में अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि वो सभी फ़र्ज निभाया जो तुम्हें निभाने चाहिए थे, पर तुमसे निभाए नहीं गए। मेरे पति तुम नहीं, आयुष्मान जी हैं, और अर्श मेरे और आयुष्मान जी का बेटा है, तो उससे ज़बरदस्ती अपना रिश्ता जोड़ना बंद करो। आज तुमने जो किया उसके बाद भी तुम्हें यूँ छोड़ रही हूँ, पर यह आखिरी बार है। अगर दोबारा तुमने मेरे परिवार, मेरे बेटे पर अपनी बुरी नज़र डाली तो मैं तुम्हें तुम्हारे अब तक के सभी गुनाहों की सज़ा दूंगी, और ऐसी सज़ा दूंगी जिसकी कल्पना भी तुमने कभी नहीं की होगी। प्रेम को धमकाने के बाद प्रीति एक पल के लिए भी वहां नहीं ठहरी। उसने अर्श को उठाया और खुद पर टिकी सबकी निगाहों और उनके सवालों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए वहां से चली गई। प्रीति जिन बातों को कभी किसी के सामने नहीं लाना चाहती थी, आज वो सबके सामने आ चुकी थी। पर प्रीति को किसी बात का डर नहीं था। आज उसने हिम्मत से अपना पक्ष रखा और प्रेम को उसके गुनाह दिखाते हुए वहां से चली गई। सब उसके इस बुलंद आत्मविश्वास भरे रूप को देखते ही रह गए। प्रीति और प्रेम की बातों ने सारी स्थिति साफ कर दी थी। पूरी बात सुनने के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सब समझ गए थे कि सामने खड़ा इंसान प्रीति का पहला पति है, जिसने उसे धोखा दिया है, शादी की अगली रात उसे छोड़कर भाग गया, और आयुष्मान उसका दूसरा पति है जिसने उसे और उसके बच्चे को अपनाया है। प्रीति की बातें सुनने के बाद सब जितना हैरान हुए थे, उतने ही प्रेम के लिए उनके मन में नफरत भर गई थी। प्रेम के गुनाहों को सुनने के बाद उससे घिन महसूस करते हुए सब नफरत भरी निगाहों से उसे घूरने लगे। उन औरतों में से एक औरत प्रेम के सामने आकर खड़ी हो गई और नफरत भरी निगाहों से उसे घूरते हुए बोली, सुअर की चमड़ी का बना है क्या, इतना सुनकर भी अब तक यहीं खड़ा है? तेरे जैसे आदमी का हमारी सोसाइटी में आना मना है। पहले ही बहुत तमाशा कर लिया तूने, अब चुपचाप अपनी बची हुई इज्जत लेकर चला जा यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ कदम मत रखना, वरना अगली बार अपने पैरों पर जाने के काबिल नहीं रहोगे। पहले तुम्हें अच्छे से कूटेंगी, फिर हमारे यहाँ की औरतें और बच्चे को परेशान करने के लिए पुलिस के हवाले कर देंगी। दूसरी औरत ने इतने में गार्ड को बुला लिया और सख्त हिदायत दी कि ये आदमी दोबारा सोसाइटी के अंदर तो क्या, आसपास भी नजर आए तो सीधे पुलिस के हवाले कर दे उसे। गार्ड ने हामी भरी और प्रेम को बाहर जाने को कहा तो वो खिसियाते हुए वहां से चला गया। सब औरतें कुछ देर वहीं रहीं, फिर अपने अपने घरों में चली गईं। वहां लगभग सभी पढ़ी लिखी औरतें थीं तो सबके पास इतना दिमाग था कि सही गलत में फर्क समझ सकें। यहां सबके सामने सच्चाई तो आई, पर किसी ने भी प्रीति को गलत नहीं समझा और मिलकर डिसाइड किया कि कुछ देर बाद जाएंगी सब साथ मिलकर प्रीति से बात करने।